получила от отца. बाकी हटा लो, ये एक हटा लो, ये गुजराती में आए हिंदी में छे क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिद्धाणम नमो आयरीयाणम नमो उवज्झायाणम नमो लोय सव्यसाहुणम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम मंगल में मंगल करण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। मात्र 15-20 मिनट स्वाध्याय करेंगे अपन। वैसे तो वही विषय ले रहे था मैं जो गुरुदेव श्री का चल रहा था, अभी बहुत वैराग्य वर्धक विषय था, तथापि भाई श्री ने कहा कि कुछ अलग विषय ले लूं, थोड़ा समझने जैसा विषय है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि पानो नंबर ये गुजराती में 9-6 या 6-6 200-269। इस अनादि अनंत विश्व में जीव राशि ठसा ठस भरी है, चारों तरफ जीव ही जीव है। बंबई वालों को इसे समझने में देर ना लगे, व्यक्ति कुत्ता बिल्ली की तरह जन्म लेता है और कुत्ता बिल्ली की तरह देह छोड़ देता है। जिधर देखो जीव ही जीव है। ये संसार एक नाट्यशाला है, एक विचित्र प्रयोगशाला है। व्यक्ति कहां से आता है, कहां जन्म लेता है, कहां देह छोड़कर चला जाता है। अभी स्तूप देश का मूल संस्कृत में दिग देशे व्या खगा इत्या संवसंती नगे नगे स्व स्व कार्य बसाद्यंती देश दिक्षु प्रगे प्रगे। कहां से जन्म लेता है, तीर्थंकर के घर में भी जन्म लेकर कई कई जीव अधोगति भी चले जाते हैं। ऐसा भी होता है कि हाँ, एक ही घर में जन्म लेने वाला एक व्यक्ति स्वर्ग चला जाता है, एक मोक्ष चला जाता है, एक नरक चला जाता है। सब अपने भावों का खेल है। किसी को एरावत हाथी मिले और उससे पूछा जाए कि तू क्या करेगा इसका, वो ये कहे मैं इस पर ईंधन ढोऊंगा, किसी को रत्न मिले और उससे ये पूछा जाए कि तू इसका क्या करेगा, वो ये कहे कि मैं इस रत्न के प्रकाश से कपड़े सिलूंगा, किसी को अमृत मिले और उससे कहा जाए कि तू इसका क्या करेगा, वो कहे मैं इससे पैर धोऊंगा, उसी तरह किसी को मनुष्य पर्याय मिले और श्री गुरु इससे पूछे कि तू इस मनुष्य पर्याय का क्या करेगा, तो वो ही कहे मैं विषय कषाय का सेवन करूंगा। जिंदगी बहुत थोड़ी है इस काल में, बहुत बाहर के संयोग विचित्र हैं, ऐसी समय में आत्मा के मार्ग में जो लगे वो बहुत पवित्र भाग्यवान जीव है। तो टूडरमल जी से पूछा गया कि पात्र जीव कौन है, पात्र निश्चय से देखो तो अपात्र कोई आत्मा होता ही नहीं, सब पात्र ही है। सोगानी जी साहिब से पूछा पात्र कोने कहे छे, पात्र जीव कौन है, बोले वो स्वरूप में दृष्टि लगे बस यही पात्रता है। टूडरमल जी पात्र माने जिसको अल्प काल में सम्यक्त्व होगा, सदा सुखदास जी की भाषा में कहें तो भद्र पापी, पापी तो है लेकिन भद्र है, मोक्ष मार्ग में लगने के लिए तैयार है। आप दो तीन लाइन की चर्चा करेंगे संक्षिप्त में, समझने जैसा है। हवे सम्यक्तु सन्मुख जे मिथ्या दृष्टि छे तेनो निरूपण करिए छिए, गुरुदेव श्री के प्रवचन है। भाषा कैसी है, सम्यक्तु सन्मुख, वास्तव में सम्यक्तु सन्मुख है या आत्म सन्मुख? कहेंगे ऐसा कि सम्यक्तु सन्मुख, पर सत्य यह है कि आत्मा के सन्मुख हो रहा है धीरे धीरे, जगत से अरुचि है। स्वयं अपना विचार करो, बैठ जाओ, जब रात को नींद ना आए, स्वयं अपने विचारों में मग्न हो, अपने विचारों को पढ़ना सीखो। ये हमारे जितने भी महापुरुष हुए इन्होंने अपने विचारों का विश्लेषण किया, तो स्वयं अपने आप से पूछो हमें देह से भेद विज्ञान है या द्वेष है, हमें पुरुषार्थ है या कर्म चेतना की आग है, दोनों में अंतर है। सत्य तो यह है कि पुरुषार्थ अलग चीज है, कर्म चेतना का रस अलग है। पंचास्ती काय में तीनों का बहुत अच्छा वर्णन किया है। हम मंदिर में आकर भी व्यस्त हैं और घर में भी व्यस्त थे, इसका मतलब हमने एक वासना छोड़ी और एक वासना पकड़ ली, पर वासना नष्ट नहीं हुई। हम वहां पर भी भार युक्त थे और यहां पर भी भार युक्त हैं, निर्भार नहीं हुए। सत्य तो यह है कि जगत मात्र से जब वो उदास होता है जीव, कोई मंद कसाय आदि नु कारण पामी नहीं, कोई माने विदाउट पुरुषार्थ स्वयमेव ऑटोमेटिक मंद कसाय होती है। कर्मो ना क्षयोपशम थयो, ऐसा क्षयोपशम नहीं कि जगत को जान ले, बल्कि ऐसा क्षयोपशम कि आत्मा को जानने की योग्यता खड़ी हो जाए। विषय तो इतना एक महीनों चले डूब जाए, विषय ऐसा है, अद्भुत विषय है ये सम्यक्त सन्मुख का। गुरुदेव श्री के सीधे प्रवचन पढ़ो तो घर जाने का मन ना लगे, ऐसा लगे कि घर की ताले लगा लगा कर चावी सागर में फेंकी आओ। क्यों? क्योंकि अभी हम सब प्लानिंग पूर्वक आते हैं यहां, चलो फिर चलना है, इसलिए एक भार उतारते हैं और एक भार सर पर लाद कर लेकर जाते हैं, निर्भार नहीं होते। तो क्षयोपशम थयो तेथि तत्व विचार करवानी शक्ति प्रकट थई। ये नहीं लिखा कि क्षयोपशम थयो उससे क्रिया कांड बढ़ा, ये नहीं लिखा। क्या लिखा? तत्व विचार करने की शक्ति प्रकट हुई। मुझे लेनी नीचे की लाइन है, 15 मिनट में वही होगी, लेकिन ये पूर्व की लेना जरूरी है। चालू छे अच्छा। तत्व विचार करने की तत्व विचार हुआ नहीं अभी, तत्व विचार करने की शक्ति हुई। इसको दूसरे शब्दों में कहें तो विशुद्धि लब्धि। किसी में मंद कसा इस जाति की भी हो सकती है कि प्रतिदिन पूरे नगर के लोगों को भोजन कराए, लेकिन विशुद्धि अलग चीज है और विशुद्धि लब्धि अलग चीज है। विशुद्धि तो अनंतवार हुई, पर विशुद्धि लब्धि, वो कौन सी विशुद्धि लब्धि कि जिसके व्यय होने पर जीव को समकित प्रकट हो, यथार्थ विशुद्धि लब्धि। जिसको श्रीमद् जी की भाषा में कहें तो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ऐसा तत्व विचार जीव को नहीं हुआ आज तक शांति से अपने लिए। तो तत्व विचार की शक्ति प्रकट हुई तथा मोह मंद थयो तेथि तत्व विचार मा उद्यमी थयो। मोह मंद का लक्षण क्या है? तत्व विचार में उद्यम। ऐसा भी हो सकता है कि जगत को ऐसा लगे कि हम तत्व विचार में उद्यमशील हैं। आप जानते हैं सच्चा तत्व में उद्यमी कौन है? जहां घोर पाप के उदय में भी जिसका चेहरा अंदर से तत्व विचार से खिलता रहे। एक अपने ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी हुए हैं, सहज सुख साधन में उन्होंने एक लाइन लिखी है बहुत प्यारी, हम धर्मात्मा हैं इसका निर्णय कब होता है? असहता के उदय में। क्या बोला? असहता के उदय में। पहाड़ जैसी प्रतिकूलता आ पड़े, सर पर सिगड़ियां जल रही हैं, शरीर के सहस्त्र खंड हो जाएं, देह में कोई आग लगा दे, तिल तिल। एक तो अभी बहुत अच्छा पद्य भूधरदास जी का मुझे याद नहीं आ रहा, सम्मिश शिखर में किसी ने लिया था कि मैं जगत से एक कृपा चाहता हूं। ज्ञानी जी प्रार्थना कर रहे हैं जगत से कि मेरा सबसे निवेदन है तुम्हें जितने उपसर्ग करने हैं करो, और यदि तुम्हें देह को लेकर संतोष होता है तो वो भी करो। इस शरीर को फाड़ दो, चीर दो तो भी संतोष नहीं होता हो तो आग लगा दो, फिर भी एक निवेदन है तुमसे कि तुम हमसे कुछ बात मत करो। क्यों? क्योंकि मैं मेरे से बात करना सीख गया हूं। मैं किससे बात करूं, क्यों करूं? तो जहां जीव का मोह मंद होता है वहां तत्व विचार की शक्ति उत्पन्न होती है। ये किसी और तत्व विचार में उद्यम होता है, सुख में, दुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, यश में, अपयश में, ऐसा तत्व विचार। बस वो ज्ञानी का प्राथमिक लक्षण है। ये जरूरी नहीं हो सकता है इस सभा में कोई ऐसा भी जीव हो, इस बोलने से कुछ नहीं होता, ऐसा बैठकर भी अनंत बार सुना है, ऐसे बैठकर भी अनंत बार बोला है, लेकिन अंतर्मुखी परिणति वो हुई है या नहीं हुई हम स्वयं ही पहचाने अपने आप को। इस तत्व विचार के उद्यम में क्या होता है? अनिबाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादिकनु तथा ए बड़े सत्य उपदेश नो लाभ थयो। बाह्य निमित्त अद्वत अद्वत नहीं हो सकता। कौन होंगे? देव गुरु धर्म। सब हमारे गुरुदेव तो ये कहते हैं कि ये तो परद्रव्य छे। हां परद्रव्य छे, पर जब भी तेरे को उचित तत्व विचार होगा उसमें सच्चे देव गुरु धर्म निमित्त बनेंगे। याद रखना। ब्रह्मचारी राय मल जी एक चर्चा संग्रह ग्रंथ है, उन्होंने उसमें 7 तरह के पाप गिनाए हैं। कितनी? उसमें सबसे बड़ा पाप क्या है बोलो ना, अभी चर्चा करते हैं। वहां सबसे बड़ा कहा, मैं सबसे छोटा पूछ रहा हूं आपसे अभी, क्योंकि जो क्रम कहने का है वो ही क्रम छोड़ने का है, और वो ही क्रम टोडरमल जी ने यहां दिया है। दुनिया में सबसे छोटा पाप कौन सा है? बड़े की चर्चा तुम बहुत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ना छोटा निकला हो ना बड़ा निकला हो। छोटा पाप कौन सा है? बड़े नहीं पूछ रहा मैं। तो उसमें पंडित जी साहब ने फरमाया, सबसे छोटा पाप न्याय नीति पूर्वक आजीविका और न्याय नीति पूर्वक भोग। क्या बोला? न्याय नीति पूर्वक आजीविका और न्याय नीति पूर्वक भोग। जैसे कोई रात्रि में भोजन करे वो तो पाप है ही, पर दिन का भोजन पुण्य है एम नथी, ऐसा नहीं है, वो मंद पाप है। तो जगत का छोटा से छोटा पाप कौन सा है? न्याय नीति पूर्वक आजीविका और न्याय नीति पूर्वक भोग। अब आगे, अब इससे बड़ा पाप कौन सा है दुनिया में? 7 है ये, 7 का क्रम बता रहा हूं, टोडरमल जी के साथी थे ये। इससे बड़ा पाप कौन सा है? आप नहीं बोलते तो मैं क्यों बोलूं? जबरदस्ती बल लगाने से क्या लाभ है? कुछ है नहीं, कितनी भी चीखो कितना भी बोलो, उस वक्ता को बहुत भारी भ्रम है कि जो चीखता है क्यों चीख रहे हो। इसी स्टोप देश में आगे की गाथा आएगी, अज्ञानी लाख उपायों से ज्ञानी नहीं हो सकता और ज्ञानी को अज्ञानी नहीं किया जा सकता, इसलिए ज्ञानी जगत जन को देखकर मौन धारण करते हैं। सब ज्ञानी प्रवचन तो करते देखे जाते हैं अपने विकल्प को पूरा करने के लिए। जगत जन सुधर जाएगा ऐसा नहीं है। तो इससे बड़ा पाप बताया, अन्याय अनीति पूर्वक आजीविका और अन्याय अनीति पूर्वक भोग, 2 नंबर। इससे भी बड़ा पाप कौन सा है दुनिया में? तो बताया, तीव्र पापों में प्रवर्तन, हिंसा, झूठ, चोरी। अब इसका नक्की कौन करेगा कि तीव्र पाप किसे कहते हैं और मंद पाप किसे कहते हैं? तो आप सुनोगे तो आश्चर्य करोगे, उसमें ऐसा लिखा, धर्म क्षेत्र में किया गया पाप तीव्र पाप है। धर्म क्षेत्र में माथा जलता है 24 घंटे, यहां भी आकर हिंसा कर रहा है, यहां भी आकर झूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, तो वज्र लेप हो गया, भविष्य में मरी ने नरक जाए। जैसा अभी बताया ना, लक्ष्मण नरक गए, राम और लक्ष्मण सगे भाई होने पर भी रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की परिणति नहीं सुधार पाए। इतना प्रेम था राम को लक्ष्मण से कि राम सीता के बिना तो रह सकते थे लेकिन लक्ष्मण के बिना नहीं रह सकते थे। लक्ष्मण को राम से इतना प्रेम था, राम के मरण के झूठे समाचार सुनकर लक्ष्मण के प्राण निकल गए, वो लक्ष्मण के परिणाम नहीं सुधार पाए रामचंद्र जी, और उसी भव से मोक्ष गए। लक्ष्मण कहते थे रावण को मार दो, राम कहते थे नहीं भैया समझाओ। लंका जीतने के बाद राम की आंखों में आंसू थे, लक्ष्मण कहते भैया आज तो खुश होने का समय है, शत्रु जीत लिया, तुम निराश क्यों हो? राम कहते हैं दूसरे की हार में किसी की विजय है और किसी की विजय में दूसरे की हार है, मैं नहीं चाहता कि विश्व का कोई प्राणी हारे। बहुत गजब के जीव थे भद्र परिणामी। तो तीव्र हिंसा, इससे भी बड़ा पाप कौन सा है? 4 नंबर का, पहले नंबर का कौन सा था? न्याय नीति पूर्वक आजीव का कोई ये सोच रहा हो हम तो पाप ही नहीं कर रहे कि नहीं, न्याय नीति पूर्वक आजीव का भी एरावत हाथी पर ईंधन ढोने जैसा है, सारी संपदा यहीं छोड़कर जाना है, व्यर्थ में समय लगा रहे हैं, व्यर्थ में। अभी किसी ने अमेरिका की कोई लेडी थी, दोनों हाथ से धन लुटाया और दीक्षा ले ली, ऐसा उससे पूछा, जब लुटाना ही था तो क्यों कमाया? बोले उस समय सत्य का पता नहीं था। अब क्यों लुटा रहे हो? क्योंकि जब तक रहेगा तब तक मोह रहेगा, ये व्यवहार का कथन है, ऐसा ऐसे हाथों से। फिर इससे भी बड़ा पाप कौन सा है कि तीव्र क्रोध, तीव्र मान, तीव्र माया, तीव्र लोभ। हिंसा और कसायों में अंतर है? हां अंतर है। यदि अंतर नहीं होता तो भगवान ने अंतर क्यों लिखा? पाप पांच होते हैं, कसाय चार के। इन दोनों में अंतर क्या है? कसाय और पाप में, कसाय कारण है, पाप कार्य है। कसाय पावर हाउस है, पाप एक्टिविटी है। पाप प्रकट रूप में दिखाई देता है, कसाय उसका कारण होता है। तीव्र क्रोध, उसका भी लक्षण ये लिखा, धर्म मार्ग में उपजे रोष। धर्म मार्ग में रोष उपजना, ये अनंतानुबंधी क्रोध, अनंतानुबंधी मान। देव गुरु धर्म सो अभिमान, गुरु से ऊंचा होना चाहे, ये अनंतानुबंधी मान। माया, छल सो धर्म रीति दल मले, छल के द्वारा धर्म नष्ट करना, अपने पाप को पोषण करने के लिए ग्रंथों में वही वाक्य इकट्ठे करना। और लोभ, लोभ उदय निर्माले खाए, निर्माल्य का भक्षण करना, जो धन जो संपदा देवगुरु धर्म के लिए निकाली है उसको व्यक्तिगत यूज करना, इससे बड़ा पाप नहीं है कोई। यदि एक दाना भी अपने लिए यूज कर ले तो मर के काक योनि में जाए, कौआ ऐसा। ये चौथे नंबर का बड़ा पाप कहा। इससे भी बड़ा पाप कौन सा है कि अज्ञान पूर्वक किया गया क्रिया। क्या? अज्ञान पूर्वक की गई क्रिया। वहां प्रश्न हुआ कि प्रभु कसाई से भी बड़ा पाप है ये? कि हां। क्यों? क्योंकि अज्ञान में मिथ्यात्व का पोषण होता है। पद्म नंदी पंच विशिष्टिका में गुरुदेव श्री के प्रवचन है, उस पर उसमें एक लाइन तो ऐसी लिखी, हजारों बार हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में जितना बड़ा पाप लगता है उससे भी अनंत गुणा पाप एक बार के ग्रहित मिथ्यात्व में लगता है। ये पांचवें नंबर का बड़ा पाप। इससे भी बड़ा पाप कौन सा है कि अग्रहित मिथ्यात्व। मैं संजय कुमार हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, हम घर से आए हैं, हम उठकर जाएंगे, हर व्यक्ति के मस्तिष्क में उसका संसार बसा है, गलत थिंकिंग का नाम ही संसार है। हे हम आत्मा मान रहे हैं संजय कुमार, हे हम ज्ञान और चैतन्य से बनी एक शुद्धात्म तत्व मान रहे हैं अपने को जगतवासी। और इससे भी बड़ा पाप कौन सा है सातवें नंबर का, वो बताया ग्रहित मिथ्यात्व। क्या बोला? अब जो कहने का क्रम है वही छूटने का क्रम है। क्या बोला मेरे भैया? जो कहने का क्रम है वही छूटने का क्रम है। पहले छूटता है ग्रहित मिथ्यात्व, फिर छूटता है अग्रहित मिथ्यात्व, फिर छूटता है अज्ञान पूर्वक आचरण, फिर कसाय और पाप भूमिका अनुसार छह को प्राप्त होते हैं, फिर अन्याय होने का प्रश्न ही नहीं है, फिर न्याय नीति पूर्वक आजीविका रह जाती है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तो टोडरमल जी से पूछा गया, तो सम्यक तो सन्मुख करता क्या है कि देव शास्त्र गुरु के निमित्त से चार बातों का निर्णय करता है। कितनी बात? और गुरुदेव श्री ने भी वही चार बात सारी जिंदगी बताई है। देखो कौन कौन सी, बस पूरा करता हूं मैं ये। त्या पोताना प्रयोजन भूत मोक्ष मार्गना, अब प्रयोजन भूत तत्व तो बहुत है, मेरु पर्वत कितना ऊंचा है, नरक में कितने बिल हैं, ऐसा भी हो सकता है नरक के बिलों की संख्या बता के नरक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है कि तीनों लोक का नक्शा बता के नरक चला जाए, लेकिन प्रयोजन भूत तत्व जीवन में ग्रहण नहीं कर पाए, ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कंपल्सरी नहीं है। मैं तो कहता हूं द्रव्य नियोग की चर्चा करके भी निश्चयाभासी होकर कहो तो नरक चला जाए, ऐसा भी हो सकता है। भैया किसी की बात नहीं है, जब यहां से सब चले जाएं तब आया करो अकेले में, और भगवान सी मंदिर से अपनी परिणति पूछो कि प्रभु मैं कैसा हूं। जिस दिन हम अपने आप को पढ़ने लगेंगे, गुरु से मिलान करने लगेंगे, समझना उस दिन से हमारा अज्ञान और पाप नष्ट होना शुरू हो जाएगा, उसी दिन से। तो चार बात हैं प्रयोजन भूत तत्व में, जिनको इन चार का निर्णय हो गया वो सम्यक तो सन्मुख है, या तो उसको इसी भव में समकित हो जाएगा या दो चार भव में हो जाएगा। वो चार बात कौन सी है वो बता देते हैं। पहला देव गुरु धर्म, मिलके बोलो क्या कहा, सबसे पहले ये निर्णय करना मेरे देव कौन, मेरे गुरु कौन, मेरा धर्म क्या। अरे आपको पता नहीं है अनंत भव निकल गए कुदेवों के आगे माथा फोड़ते फोड़ते, जैसे किसी की मां खो गई हो और आज 25-50 वर्ष में मिल रही है तो उस बेटे की आंख और हृदय की स्थिति कैसे होगी। ऐसी अनंत भव में हमको बीतरागी देव मिले, निर्ग्रंथ गुरु मिले, निर्ग्रंथ जिनवाणी मिली, तो उसे देखकर अंदर में कितना बहुमान आना चाहिए। इसलिए जिन मंदिरों को जहां देवशास्त्र गुरु स्थापित हैं, उस स्थान को मोक्ष का स्टेशन कहा है। इस काल में ये भी पद्मनंदी पंचविशिष्टिका में भी आया और नियम सार में भी आया, रेगिस्तान में जलाशय कहा जिन मंदिर को, जलाशय रेगिस्तान में जलाशय है, ये बहुत बड़ी चीज है ये देव गुरु धर्म। लेकिन निर्णय होना चाहिए मेरे देव कौन, मेरे गुरु कौन, मेरा धर्म कौन, इससे बड़ा और क्या चाहिए। देव गुरु धर्म मिल गए। अब जब निर्णय हुआ देव गुरु धर्म का, फिर उनके निमित्त से क्या निर्णय हुआ, जीवादि तत्व होना। क्या बोला, जीवादि तत्व होना, मैं जीव तत्व हूं, बाकी बाहर में जो कुछ है तो अजीव तत्व है। फिर अजीव में भी जी अजीव का विस्तार किया और जीव का विस्तार किया उसमें। फिर सात तत्व में भी समेटा टोडरमल जी ने कि सात में स्व क्या है और पर क्या है। क्या बोला, अच्छा बताओ सात में स्व क्या है और पर क्या है। मैं एक शुद्ध जीव तत्व हूं, जीव तत्व अशुद्ध होता है ऐसा नहीं, वो तो शुद्ध ही है। ये खिलखिलाने वाली बात है, सूख जैसी बात नहीं है ये, इसका रस चढ़ जाए जगत फीका ढेर राख का ढेर नजर आए। आज आपको पता नहीं है पूरा विश्व बारूद के ढेर पर बैठा है, बारूद के ढेर पर पूरी दुनिया, यहां से बाहर निकलो तो चारों तरफ आग लगी है। ये तो पूर्व जन्म में कहीं कोई अच्छे निदान पुण्य कमाया होगा कि जो आज देवगुरु चरणों के बीच में अपन बैठे हैं यहां पर, ऐसा ये कोई साधारण बात नहीं है, ये चर्चा भी नहीं है जगत में, ये चर्चा भी नहीं है। धर्म के नाम पर भी केवल कीर्तन हो रहा है, कीर्तन केवल। तो इस सात में भी दो का निर्णय कर, स्व क्या है पर क्या है, इस बात को पचाने के लिए 72 फुट का कलेजा चाहिए कि मोक्ष भी पर है। यदि मोक्ष पर ना होता तो सात तत्व में अलग क्यों कहते, संबर निर्जरा मोक्ष ये पर है, अजीब तो पर है ही, और आश्रम बंद की तो तू चर्चा ही मत कर, वो तो गंदी चीज है। मैं तो जीव तत्व हूं, कहने के लिए नहीं, फीलिंग करने के लिए, आनंद लेने के लिए। और जब ये निर्णय हो गया स्व क्या है और पर क्या है, फिर अब दो बात बची कि अहितकारी क्या है और हितकारी क्या है, कि हितकारी ये है कि तू जीव तत्व में समा, और अहितकारी क्या है कि तू जगत से तटस्थ हो जा। भेद ज्ञान के नाम पर द्वेष मत कर। हितकारी है अपने स्वरूप में लीनता, अपने स्वरूप की श्रद्धा, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप में लीनता, ये है हितकारी। और बाकी क्या है? अहितकारी। ठीक है ना। इत्यादि उपदेश थी सावधान थई, ए वो विचार करो कि अहो मने तो आ बात नी खबरज न थी। कौन सी बात की खबरज न थी? इन चार बातों का। इसलिए सब घर जाकर नक्की करना, हम भी करेंगे, कि हमें जब से गुरुदेव मिले और आज तक हमने इन चार बातों का निर्णय किया है या नहीं किया है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अपने सहित, भाषा थर्ड पर्सन है, हमें कोई प्रवचन का अधिकार थोड़ी है, हम तो वाचना कर रहे हैं, सच बोल रहे हैं आपको, जिनवाणी की गद्दी पर असत्य थोड़ी बोलेंगे, ये अपनी ताकत नहीं है, ये तो गुरुदेव का काम है, निर्ग्रंथ मुनिराजों का काम है। वन जंगल में बैठकर मुनि भगवंतों ने ये अमृत बांटा है। रागी के मुख से बीत रागी की बात शोभा नहीं देती, ये तो इसलिए समय सार में एक जगह लिखा, विरक्त गुरु के द्वारा बारंबार समझाई जाने पर। क्या लिखा? जो स्वयं भवसागर में डूब रहा है, जिसको नाव डूब गई और खुद डूबा जा रहा है, वो लोगों से कह रहा है निकलो निकलो, ये कैसा लगेगा? जो स्वयं तैरना जाने वही दूसरे को निकाल सकता है, तो जो स्वयं जगत से विरक्त है वही दूसरे को विरक्त कर सकता है। बहुत साधारण बात नहीं है भैया, ये हम यहां सुनकर तो भीग जाते हैं, यहां से निकलती फिर वैसे के तैसे हो जाती है। इसलिए इन चार बातों का निर्णय आज से अभी से करना है। इत्यादि उपदेश थी सावधान थई, एवो विचार करो अहो मने तो आ बात नी खबरज न थी। तो तुम्हें खबर नहीं थी तो तुम कर क्या रहे थे? कि हूं भ्रमति भूल प्राप्त पर्यायमाज तन्मे थयो। मैं इसी में तन्मे था कि मैं विधानाचार्य हूं, मैं प्रतिष्ठाचार्य हूं, पूर्व जन्म क्या बोलते हैं, वो पंडिताई सर पे पड़ी, पूर्व जन्म को पाप, औरों को उपदेश दे और कोरे रह गए आप। ऐसा तुम कर क्या रहे थे? जब तुम्हें ये पता नहीं था तो कर क्या रहे थे? कि इस प्राप्त पर्याय में थन में थे, प्राप्त पर्याय में सब अपने अपने लिए घटा लेना, पर आप पर्यायनी तो थोड़ाज कालनी स्थिति छे। अब यहां से सही सलामत घर पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे पता नहीं, ऐसी स्थिति है। ऐसी डेली आज आप जिस पड़ोस में रह रहे हो, हर 100 व्यक्ति में से हर महीने में एक बार एक व्यक्ति के कैंसर की सुनते हैं, आज उसको कैंसर हो गया, आज उसको कैंसर हो गया, उसकी एक महीने की स्थिति है, उसको 2 महीने की स्थिति है। जीवन है कितना? जरा सा है। 5 लाख 2 लाख वर्ष की उम्र होती तो खूब कमाते खूब खाते, लेकिन आयु ही बहुत थोड़ी है। इसलिए ये जीवन केवल तत्व निर्णय और तत्व लीनता। श्रीमद जी की पुस्तक है बहुत प्यारी, एक तो विशुद्धि नी भूमिका, पहले पात्रता की भूमिका, फिर निर्णय नी भूमिका, और फिर आराधना नी भूमिका। तो पात्रता क्या है? कि जगत से हटके तत्व का निर्णय करो, और फिर इसी तत्व मानी जीव तत्व पे जीवन लगा दो, तो फिर मैं बना बनाया भगवान हूं। सोगानी जी की भाषा में कहें तो फिर मोक्ष होए तो क्या चिंता, और नहीं होए तो क्या चिंता। बस आज अभी समय हो गया।